ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 3 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 10. கிருப்பையா இன் அத்தியந்த அத்புத் சப்தோங் கோ மேரே சாத் சாத் உச்சாரண் கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேத்தே ஹே சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதி அனேனா பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சஹயக்யா பிரஜா ஸ்ரேஷ்ட்வா புருவாச்ச பிரஜாபதிஹி அனேன பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோஸ்த்விஷ்ட காமதுக் சப்த அர்த்த தேக்கியே. சஹ யக்யா, சஹ யக்யா மன சஹ மன கே சாத் யக்ய மன யக்யோ கே சாத் பிரஜா யானி சந்ததியோ யானி ஜித்னே பி வரண ஜித்னே பி யோனிய ஹை உன் சப்கோ ஜித்னே பி ஸ்பெஷல் ஜோ மனுஷ்ய யோனி ஹை உன் சப்கோ யக்யோ கே சாத் ஸ்ருஷ்ட்வா யானி ரச்கர் பூரா யானி பிராச்சீன கால் மே உவாச்ச கஹா பிரஜாபதி யானி பிரஜாபதி கா மத்லப் ஹோதா ஹை ஜீவோ கே ஸ்வாமி. வாஸ்தவ மே பிரஜாபதி கா மத்லப் ஹோதா ஹை ஜோ பிரஜா கோ பாலன் கர்னே வாலா. அப் இஸ் பிரஜாபதி கா மத்லப் ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜி நே க்யா லிகா ஹை ஜீவோ கே ஸ்வாமி. லேகின் ஸ்ரீல பல்தேவ் வித்யாபூஷண் அப்னே டீகா மே பிரஜாபதி கா அர்த்த லிக்தே ஹை விஷ்ணு. ஔர் சக்கரவர்த்தி பாத் அப்னி டீகா மே பிரஜாபதி கா அர்த்த லிக்தே ஹை பிரம்மா. ஔர் ஸ்ரீ பிரபுபாத் ஜி நே யஹாம் பர் மீனிங் மே க்யா லிகா ஹுவா ஹை ஜீவோ கே ஸ்வாமி. லேகின் ஆகே சல் கே ஜப் ஹம் தாத்பர்ய படேங்கே தோ ஹமே பதா சலேகா கி ஸ்ரீ பிரபுபாத் ஜி நே பி பிரஜாபதி கா அர்த்த ஜோ ஹை வோ விஷ்ணு சே லிகா. வாஸ்தவ மே விஷ்ணு ஹி பிரஜாபதி ஹை ஜோ சமஸ்த ஜீவோ கா பாலன் கர்தே ஹை. தோ ஜப் விஷ்ணு விஷ்ணு நே ஸ்ருஷ்டி கி க்யூகி பகவான் கிருஷ்ண சே ஜப் விஷ்ணு நிகழ்த்தே ஹை தோ ஜப் காரண தக்ஷாய விஷ்ணு சே उनके श्वासों से अनेकानेक ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं और गर्भदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और क्षीरदक्षाय विष्णु के रूप में वो प्रत्येक कण कण में विराजमान हो जाते हैं। तो वास्तव में विष्णु के जरिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ये सृष्टि का भार विष्णु को ही सौंपा है। तो यहाँ पर इन्हीं उन्हीं को इंगित करते हुए कहा जा रहा है कि सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, के प्रजापति ने जब सृष्टि की रचना की थी यानी विष्णु भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न की थी तो उसके साथ ही उन्होंने यज्ञ को भी उत्पन्न कर दिया था और उसके साथ भी यज्ञ को ही भेज दिया था और उनको कहा था पुरोवाच। पुरो शब्द पहले भी है ना, श्लोक नंबर 3 में भगवान ने कहा था लोकेस्मिन् द्विविधानेश्च पुरा प्रोक्ता मया, पुरो मतलब पहले ही मैंने बोल दिया। अब पहले ही जब सृष्टि उत्पन्न की थी ना उसके साथ ही यज्ञों को भी भेज दिया था और वाच मना कहा था, क्या कहा था, अनेन प्रसविश्वत्वम, अनेन मतलब इससे, प्रसविश्वत्वम मना अधिकाधिक समृद्ध हो, इससे किससे, यज्ञ करने से। यानी जब भगवान विष्णु ने यज्ञ को भी भेजा ना समस्त योनियों के साथ तो बोला अब देखो तुम्हें अपनी समृद्धि चाहिए, तुम प्रसन्न रहना चाहते हो, तुम सुखी रहना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि तुम अनेन प्रसविश्वर इस यज्ञ से, अगर आप यज्ञ करोगे तो ही आप समृद्ध हो सकते हो, तो ही आप प्रसन्न हो सकते हो। और आगे कहा एशवोस त्विष्ट कामदो, एशवोस यानी यह तुम्हारा उस यानी होएगा इष्ट, समस्त वांछित वस्तुओं का कामदो प्रदाता। यह यह मना ये जो यज्ञ है वो विधि यदि आप अपनाओगे तो इसी के अनुसार तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। जिस तरह कामदुख लिखा ना, कामदुख का मतलब होता है प्रदाता, जैसे कामधेनु गौ होती है वो हमें सब कुछ देती है ना, तो इष्ट कामदुख यानी कि वो आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। ये जो यज्ञ है, जीव जब यज्ञ करता है तो वो समृद्ध रह सकता है, वो यानी बहुत ज्यादा खुश रह सकता है, प्लस उसकी समस्त इच्छाओं भी पूरी हो सकती है। वास्तव में भक्तों ये यज्ञ एक ब्रिज के समान है, जो व्यक्ति पृथ्वी से ऊपर जाना चाहता है, यानी कोई अगर पृथ्वी से व्यक्ति को वैकुंठ लोक तक लेकर जा सकता है यज्ञ, अगर हम सही विधि अनुसार यज्ञ करते हैं तो भगवान के वैकुंठ में हमें स्थान मिलता है। लेकिन अगर कोई कर्मकांड के रूप में भी यज्ञ कर रहा है, यानी कि कर्मकांड के रूप में जैसे यज्ञ कर रहा है, तो वो स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, उच्च लोगों को प्राप्त कर सकता है यज्ञों के अनुसार। मतलब ये यज्ञ एक विधि है, जैसे हमारे पास एक विधि होती है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने की कोई ना कोई ट्रेन पकड़नी होती है या एरोप्लेन में बैठना पड़ता है, वीजा लेनी पड़ती है, तो ये यज्ञ एक विधि है जिसके अनुसार व्यक्ति अदर प्लैनेट्स में जा सकता है। और अगर सही विधि अपनाई जाए तो स्वर्ग तक ले जाएगा, पर यदि वो समझता है कि यह यानी कि सकाम कर्म समझ के या काम कर्म समझ के यज्ञ को नहीं करता है, बल्कि ये सोचता है कि मैं यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ, केवल और केवल मेरा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, मुझे इसकी बदली में कुछ मांग नहीं है, केवल मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, तो यह यज्ञ यह ब्रिज हमें वैकुंठ लेकर चला जाता है। यानी कि ये यज्ञ में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको स्वर्ग ले जा सकता है, ब्रह्म लोक। लेकिन जब भक्त को पता चल जाता है 8.16 में भगवान बहुत ही स्पष्ट वर्णन करते हुए कहते हैं आब्रह्म भुवना लोक पुनरावृति नो अर्जुन माम उपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यति। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वहां से तो फिर इस दुखों भरे जीवन में वापस आना पड़ता है। तो जिसके पास बुद्धि है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल बुद्धिमान व्यक्ति वह यज्ञ करते हैं जो कि
मुझे प्राप्त कराने वाला है। और आगे कृष्ण प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताएंगे कि हमें किस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्तुतियां को रचा और उनसे कहा, यानी कि जो प्रजापति हैं उन्होंने देवताओं और मनुष्यों के जितने भी योनियां थी उनको बनाया और उनको क्या कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यहाँ पर बोला अनेन प्रसविश्वध्वं एषवो तुष्ट कामद, इस संसार में प्रसन्न रहने के लिए अथवा मोक्ष के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको यज्ञ से प्राप्त होगा। यानी अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी हमें बताएंगे कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्राणियों के स्वामी यानी विष्णु, यहाँ पर प्रजापति को श्री प्रभुपाद ने विष्णु के से संबोधित करते हुए कहा कि विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना, अब यह संसार भौतिक संसार जो है वो विष्णु जी ने रचा, इसलिए नहीं कि सब जानवरों की तरह हर एक दिन केवल आहार निद्रा भय मैथुन कैसे क्या खाऊं का क्या पीऊं कैसे जीऊं कैसे अपने जीवन की सुविधाओं को प्राप्त करूं, इसलिए नहीं रचा है इस संसार को। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का स्व अवसर है। यहाँ पर संसार में हम आए हैं वो केवल और केवल इसलिए कि हम कोई ऐसा कार्य करें कि हम वापस से अपने वास्तविक स्वरूप तक अपने वास्तविक स्टेज तक पहुंच सकें। इस संसार में हम आए हैं हमारी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि हम भगवान की इस सृष्टि पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रखते तो भगवान ने हमें अपने उस भव्य लोक से नीचे गिराकर ये बोल दिया कि चलो ठीक है तुम जाओ और जो करना है करो अपने यहाँ पर, अगर तुम वापस से मेरे घर में आने की योग्य बनना चाहते हो तो उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो यह संसार एक अवसर है, यहाँ पर आकर हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है, हम कहीं भी जा सकते हैं। हम स्वर्ग जाना चाहें तो स्वर्ग जाने के योग्य कार्य करें, यदि ब्रह्मलोक में जाना चाहें तो उसी के अनुसार, और यदि नरक में जाना चाहते हैं तो उसी के अनुसार सात जगहों पर हमारे कार्य हमें लेकर जाएंगे। और यदि हम यज्ञ संपन्न करेंगे और भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे और अपनी वास्तविक स्थिति को फिर से प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर बताया कि यह जो संसार है भौतिक सृष्टि है वो जीवों को भगवत धाम वापस जाने का एक अच्छा अवसर मिला है, लेकिन जीव इतना अभागा है कि इस सु अवसर से कभी लाभ उठाने का नहीं सोचता बल्कि और भी निम्नतम योनियों में गिरता चला जाता है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने भगवान श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जीव की सबसे बड़ी बेवकूफी है कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। अब जितने भी शास्त्र है श्री गोपाल जी बोलते हैं, हम क्योंकि दुखी क्यों है जीव, वास्तव में दुख कुछ नहीं है, आत्मा को तो दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा को कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, कोई भी भौतिक पदार्थ आत्मा को क्षति नहीं पहुंचा सकता, तो दुखी नहीं होना चाहिए आत्मा को। लेकिन आत्मा का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपने भगवान से बिछड़ी हुई है, भगवान के साथ अपने संबंध को भूल कर ही आत्मा बारम्बार दुखी होती है, संसार में बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसती है और उसे अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो वैदिक साहित्य है, जो वैदिक नियम है, वो हमें भगवान के साथ हमारे भूले हुए संबंध को फिर से याद दिलाते हैं। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 15 टेक्स्ट नंबर 15 के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे वचाहम्। अर्थात भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, पतिं विश्वस्यात्मैव स्वरम्। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को समझना। केवल भगवान खुद स्वयं कहते हैं, समस्त वेदों का रचयिता, समस्त वेदों को जानने वाला और समस्त वेदों का लक्ष्य केवल मैं ही हूँ। तो ये वेद ही हैं जो हमें भगवान के साथ हमारे भूले हुए संबंध को वापिस से याद कराते हैं। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। पतिं विश्वस्यात्मैश्वरम्, कि समस्त जीवों के स्वामी केवल भगवान है। तो जीव जब ये याद कर लेता है कि मेरे स्वामी भगवान कृष्ण है और मैं उनका दास हूँ, उसी समय से उसके समस्त दुख, समस्त कष्ट, समस्त क्लेश सब सबका सर्वनाश हो जाता है और जीव समृद्ध हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अनेन प्रसविश्वध्वम एषवो तृष्ट कामदुख, इन्हीं यज्ञों के द्वारा आपको आपकी समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में भी 2.4.20 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। अब भगवान से अब पति का क्या मतलब होता है, पालन करने वाला, उसका रक्षण करने वाला। तो वास्तव में वो कौन है जिसके लिए हमें यज्ञ करना है, वो सुखदेव गोस्वामी चैप्टर नंबर 2 स्कंद है और 4 चैप्टर है और 20 नंबर श्लोक है, उसमें क्या बताते हैं। इसमें केवल भगवान को ही पति कहा गया, यानी केवल वही परमेश्वर है, केवल वही है जिसको हमें समस्त सर्वस्व समर्पित करना है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रेयः पति यज्ञ पति ही प्रजापति ही दियांपति लोकपति धरापति ही पतिर्गति सांधक विष्णु सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति ही। अर्थात प्रजापति तो भगवान विष्णु ही है। यहाँ पर जो प्रजापति का शब्द लिखा उसी की व्याख्या बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, पुरोवाच प्रजापति ही। तो वास्तव में प्रजापति भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा समस्त सुंदरता के स्वामी यानी पति हैं। श्रेयापति यज्ञपति प्रजापति ध्यानपति लोकपति धरामपति। तो इसके विषय में बता रहे कि समस्त चीजों के पति केवल भगवान श्री कृष्ण है, यानी उनके पालन करने वाले, उनका रक्षण करने वाले केवल भगवान विष्णु ही हैं, सुंदरता के पति और हर एक के त्राता है, यानी कि सब किसी को शरण देने वाले केवल भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। अत्यंत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी ने शब्द उच्चारण किए और कहा कि इस संसार को विष्णु भगवान ने इसलिए उत्पन्न किया है कि जिससे वो जगत जो जीव है, जो कि संसार में आते ही दुखों को भोगना शुरू हो जाता है, जिनके दुख आना प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, तो यदि वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेगा तो इससे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकेगा। अतः इस संसार में रह सुख पूर्वक रहने के लिए जीव अनेक अनेक प्रयास करता है, अनेक अनेक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दिन रात कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सुख और समृद्धि प्राप्त करने का एक सरल उपाय बताया श्री प्रभुपाद ने कि भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव ये सीख सके कि विष्णु की प्रसन्नता करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें। यहाँ पर जीव को केवल ये सीखना है कि अगर मैं विष्णु को प्रसन्न कर, यानी अर्थात अगर मैं कृष्ण को प्रसन्न कर दूंगा तो फिर मुझे खुद को प्रसन्न करने के लिए अलग से स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर जीव समस्त उसके दुख समस्त त्रिय ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और जब कोई बोलता है कि जप करो या भगवान की सेवा करो तो बोलते हमें इतने कार्य हैं कि हम इसके लिए समय नहीं निकाल सकते। परंतु भक्तों, सारा समय जो आप अपने आप को प्रसन्न करने के लिए देते हो उसमें से अगर 1% भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हम दे देते हैं तो फिर वही 1% जो है वो सक्सेस होता है, क्योंकि हमारा गोल है शांति प्राप्त करना, हमारा गोल है सुख प्राप्त करना, हमारा गोल है समस्त दुखों के निवारण का। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब हम भगवान को अपने कर्मों से प्रसन्न कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत ही क्लियर शब्द में कहा कि वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। कौन? जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो केवल वही चिंता मुक्त होकर भगवान के धाम में जा सकते हैं। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है, जितना भी कार्यक्रम है वो किसके लिए? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कि हम ये कार्यकलाप करेंगे विधि विधानों के अनुसार, जो गुरु साधु शास्त्र बताते उनके अनुसार यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम समस्त जो हमारे बद्ध जीव के जितने भी कष्ट हैं वो उनका निवारण हो जाएगा। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बन जाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पता है क्रमशः यानी कि आप जिस स्तर पे हो उसके अनुसार आपको कार्य करना है। आप कर्म कांड में हो या कर्म योग में हो या भगवत बुद्धि योग में हो तो आपको कार्य उसी के अनुसार अपने स्थिति के अनुसार करना, और इससे क्या होगा कि बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होता है, यानी कि फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे और सभी प्रकार से देव तुल्य यानी कि कृष्ण भावना भावित हो जाने के बाद इस बात की गारंटी शास्त्र देता है कि आपके अंदर समस्त देवताओं के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाविता। संसार की कोई अभिलाषा हृदय में ना बढ़े मतलब ना क्रिएट हो, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि कोई कार्य करता है तो उसके समस्त दुखों का उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। आगे श्री रूपा जी कलयुग के विषय में बता रहे हैं कि कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इसी का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। अब बता दिया श्री प्रभुपाद ने एकदम क्लियर शब्दों में कि हमें कौन सा यज्ञ करना है। यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, भगवान स्वयं कहते हैं कि यज्ञों में तो केवल मुझे भगवान के पवित्र नाम का जप ही इस युग का एकमात्र यज्ञ है, क्योंकि कलयुग में जो वेद है वो इसी बात की संस्तुति करते हैं कि नाम संकीर्तन ही किया जाना चाहिए, यही विधान है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के द्वारा उद्धार करने के लिए हुआ। इस जीवों का कलयुग में यदि कोई उद्धार पॉसिबल है तो केवल संकीर्तन यज्ञ से है, केवल भगवान के पवित्र नाम के और भगवान की पवित्र। अब संकीर्तन को हम कुछ प्रभुपाद जी बताते हैं, संकीर्तन का मतलब होता है समटाइम हम म्यूजिक के जरिए भगवान के पवित्र नाम को उच्चारण करते और कभी हम भगवान की कथाओं का श्रवण एवं कीर्तन करते तो ये भी संकीर्तन। तो ये इस कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ को ही प्रिफर किया गया है सब सारे जीवों के लिए, ताकि इसी विधि से वो भौतिक जगत को पार करके भगवान के पवित्र दिव्य लोक को पहुंच सकते हैं। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए उद्धार के लिए किया। बस इस युग में यदि उद्धार का कोई एक वस्त्र है तो वो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया यह संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है, यहाँ बशील भगवान जी बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है वो संकीर्तन यज्ञ से ही टिकी हुई है, उसी से चल रही है। तो श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विषय में विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में शास्त्र यानी श्रीमद् भागवतम में 11.5.30 में चैतन्य महाप्रभु और इस युग के संकीर्तन यज्ञ के विषय में कहा गया है, जिसमें बताया गया कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सागोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजन्ति ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, वो कृष्ण वर्ण होंगे यानी सदैव कृष्ण। अभी वर्णम का मतलब दो दफा आता है, या तो वो जो कृष्ण के पवित्र कथाओं और कृष्ण के पवित्र नामों का वर्णन करते हैं, या फिर जो कृष्ण वर्ण है। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्ण नहीं है, वर्ण मतलब कृष्ण का कलर, कृष्ण का कलर नहीं है, लेकिन सदैव कृष्ण के विषय में वर्णन करते रहते हैं। और त्रिशा कृष्ण यानी कि स्वयं आकृष्ण है, कृष्ण का मतलब होता है सांवला और अकृष्ण का मतलब होता है गौर, स्वयं गौर होंगे इसे कलयुग के लिए बताया गया। और सागोपंगस्त पार्षदम यानी कि वो अपने पार्षदों के साथ इस संसार में अवतरित होंगे और करेंगे क्या, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसः। वो सदैव संकीर्तन यज्ञ करेंगे और जो इस संसार में सुमेधस, मेधस कहते हैं जिनकी अकल विकसित होती है, और सुमेधस यानी बहुत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो इस कलयुग में बहुत ही रेयर है, बुद्धिमान नहीं है, सब लोग प्रायः है ना मंदा सुमंद मत, परंतु जो वाकई में बुद्धिमान है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित हो जाएंगे। और यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे, वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, यानी जितने भी दूसरे यज्ञ हैं वो इस कलिकाल में होना संभव तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलता, शुद्ध सामग्री नहीं मिलती, और है ना यजमान के हृदय शुद्ध नहीं होते, समय का ध्यान नहीं रखा जाता, तो बाकी सारे बहुत हार्ड हैं। किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, संकीर्तन यज्ञ बहुत आसान है, सभी दृष्टियों से अलौकिक है, दिव्य है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी 9.14 में संस्तुति की गई है। अब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में 9.14 में जो यज्ञ के विषय में बता गया वो था ना सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः।